آیت نمبر 77 سے، الم تر الی الذین قیل لہم کفوا ایدیکم واقیموا الصلاۃ واتوا الزکاۃ، کیا تم نے ان لوگوں کو بھی دیکھا جن سے کہا گیا تھا کہ اپنے ہاتھ روکے رکھو اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو، اب جو انہیں لڑائی کا حکم دیا گیا تو ان میں سے ایک فریق کا حال یہ ہے کہ لوگوں سے ایسا ڈر رہے ہیں جیسے اللہ سے ڈرنا چاہیے، یا اس سے بھی بڑھ کر کچھ کہتے ہیں کہ خدایا یہ ہم پر لڑائی کا حکم کیوں لکھ دیا؟ یہاں دیکھیں ان لوگوں کا تذکرہ جو مکی زندگی میں بار بار کہتے تھے اللہ کے نبی کو موقع آئے ہم کر کے دکھائیں گے، یہ ہمیں تنگ کرتے ہیں ہم ان سے لڑائی کریں، مدینہ میں آنے کے بعد جب عملی حکم آیا لڑنے کا لوگ پیچھے ہونے لگے، اور یاد رکھیے یہ شیطان کا ایک بہت بڑا وار ہوتا ہے، ہم سے عین وقت پر وہ نیکی چھڑوا لیتا ہے جس کے لیے ہم کئی مہینوں سے کئی سالوں سے بلکہ کئی لوگ تو پوری زندگی سے ایک دعا کر رہے ہوتے ہیں کہ اللہ ہم سے یہ کام لے لے، جب وہ کام کا وقت آتا ہے وہ اس وقت پیچھے ہو جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایسے وقت میں ان کے جملے کیا ہوتے ہیں، کہتے ہیں خدایا یہ ہم پر لڑائی کا حکم کیوں لکھ دیا، کیوں نہ ہمیں ابھی کچھ اور مہلت دی، ان سے کہو دنیا کا سرمایہ زندگی تھوڑا ہے. پیچھے دنیا ہی کی کوئی محبت ہوتی ہے جو انسان کو نیکیوں کے موقعوں پہ سست کر دیتی ہے، کہا دنیا کا سرمایہ تھوڑا ہے اور آخرت ایک خدا ترس انسان کے لیے بہت بہتر ہے، اور تم پر ظلم ایک ذرہ برابر بھی نہ کیا جائے گا، رہی موت تو جہاں بھی تم ہو وہ بہرحال تم کو آ کر رہے گی، ہاں تم کیسی ہی مضبوط عمارتوں میں ہو. سچ ہے کہ نہیں؟ لفٹ میں موت آ سکتی ہے، ملک الموت پہنچ جاتا ہے ادھر بند کمروں میں ایئر کنڈیشن میں. آپ دیکھیے کہ موت کا احساس انسان کی زندگی کو سیدھا کرتا ہے. اگر آپ دیکھیں نا تو تین قسم کی شخصیات ہیں دنیا میں، ایک وہ ہیں میکسیمائزر جو نیکی کے ہر موقع کو ڈھونڈ لیتے ہیں کیونکہ ان کو پتہ ہوتا ہے کہ شاید آج کا دن ہماری زندگی کا آخری دن ہو. دوسری قسم کے لوگ ہوتے ہیں میڈیوکرز، بین کبھی لیا کبھی نہیں، کبھی کر لیا کبھی نہیں، ایوریج پیپل. تیسری قسم کے لوگ ہوتے ہیں مینیمائزر، وہ نیکی کے ہر موقع کو کھوتے ہیں. عمر کون تھے؟ میکسیمائزر تھے. آج ہم اپنے آپ کو دیکھ کے تو ہم بیچ کے ہوں گے، اور کچھ ایسے ہیں کہ جو بالکل ہی نیکیوں کے مواقع کو چھوڑے ہوتے ہیں. کیا چیز آپ کو مجھے تیز کر سکتی ہے، ہماری سستیاں دور کر سکتی ہیں؟ اس بات کا یقین، کل متاع الدنیا قلیل، وقت تھوڑا ہے کام زیادہ ہے، وقت فرصت کہاں کام ابھی باقی ہے، دنیا میں توحید کا اتمام ابھی باقی ہے، ابھی تو مرنے کی بھی فرصت نہیں ہے، ابھی تو سونے کو بھی دل نہیں کرتا، اس لیے کہ ابھی انسانیت تک اتنا خوبصورت پیغام ہم نے پہنچانا ہے. اس کے لیے نئے جذبے، نئے شوق، نئی لگن رکھیے، اور اللہ سے دعا کریں کہ اللہ ابھی ہمیں موت نہ دینا، ابھی ہم اپنی زندگی میں کوئی ایسا کام کر لیں کہ جو ہمارے بعد ہمارے لیے بہترین قسم کا صدقہ جاریہ بنے، پھر اے اللہ ہمیں اس کے بعد موت دینا. پھر اس کے بعد فرمایا ایسے لوگ جو موت کی وجہ سے ادھر ادھر ہو جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَمَالِ هَؤُلَاءِ الْقَوْمِ لَا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ حَدِيثًا، اگر انہیں کوئی فائدہ پہنچتا ہے تو کہتے ہیں یہ اللہ کی طرف سے، اور اگر کوئی نقصان پہنچتا ہے تو کہتے ہیں نبی یہ آپ کی بدولت ہے. یہ نوٹ کیجئے جملہ، یاد رکھیے جب نیکی سے سستی آتی ہے نا تو لیڈر پہ تنقید بہت ہوتی ہے. یہ مدینہ کے وہ لوگ تھے کہ جو خود سست ہے، پیچھے نہیں کا تذکرہ ہے اصل میں، اب چونکہ جلدی میں ہم پورا واقعہ کوٹ نہیں کر پا رہے نا، یہ وہی لفظ ہے جلا یوبتی انا، نیکی کے موقع سے دور رہے. اب جب دور رہے احد میں بھگدڑ مچی، کئی کام خراب ہوئے، کہتے تھے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پلاننگ ہی نہیں ٹھیک، آپ کام ہی نہیں ٹھیک کرواتے، اور جب فتح ہوتی کہتے ہاں جی یہ تو اللہ کا فضل ہے ہم پہ. کہا تم نبی پہ اتنی بڑی بات کرتے ہو؟ کہو سب کچھ اللہ ہی کی طرف سے ہے، آخر ان لوگوں کو کیا ہو گیا کہ کوئی بات ان کی سمجھ میں نہیں آتی؟ اے انسان تجھے جو بھلائی بھی حاصل ہوتی ہے اللہ کی عنایت سے ہوتی ہے، اور جو مصیبت تجھ پر آتی وہ تیرے اپنے کسب و عمل کی بدولت ہے. تو آج کے بعد کبھی کوئی تکلیف کوئی پریشانی آئے تو کسی دوسرے کو اس کا ذمہ دار نہیں ٹھہرانا انشاءاللہ. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو لوگوں کے لیے رسول بنا کر بھیجا ہے، اور اس پر اللہ کی گواہی کافی ہے، جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے دراصل اللہ کی اطاعت کی. آپ یہاں سے بگلا حصہ سورۃ نساء کا، اطیع اللہ اطیع الرسول، پیچھے بھی گزرا ہے آگے بھی ہے. تو امت مسلمہ کو خیر چاہیے اگر اپنی زندگی میں، تو ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پہ چلنا ہوگا. اور جو منہ موڑ گیا تو بہرحال ہم نے تمہیں ان لوگوں پر پاسبان بنا کر نہیں بھیجا. کچھ اور باتیں منافقوں کی، وَيَقُولُونَ طَاعَةٌ، وہ منہ پر کہتے ہیں کہ ہم مطیع فرمان ہیں، یعنی منہ پر آتے ہیں تو کہتے ہیں ہم آپ کی ہر بات مانتے ہیں، مگر جب تمہارے پاس سے نکلتے ہیں تو ان میں سے گروہ راتوں کو جمع ہو کر تمہاری باتوں کے خلاف مشورے کرتا ہے، اللہ ان کی یہ ساری سرگوشیاں دیکھ رہے ہیں، آپ کیا کیجئے؟ فَارِدَنْهُمْ وَتَوَكَّلَ عَلَى اللَّهِ، आप इनसे एराज कीजिए, इनकी परवाह न कीजिए और अल्लाह पर भरोसा रखें और वही भरोसे के लिए काफ़ी है। यानी आप इनकी ज़्यादा फिक्र ना करें, आप इनको इनके हाल पे छोड़ दीजिए। और क्या करें, अफला यतदब्बरून अल-कुरान, क्या ये लोग कुरान में गौर नहीं करते? हम करते हैं वैसे कुरान पाक में गौर? एक पारा अगर रोज आप गौर व फिक्र के साथ पढ़े ना, जैसे मैंने आपको भी बताया कि हर पारे का एक थीम, एक चीज को लेना होता है। मैं हर साल दौरे कुरान के बाद सोचती हूँ कि जिस एंगल से इस दफा देखा मैंने पहले कभी देखा ही नहीं। जाहिर है एक सोच होती है ना कि इसमें से, मिसाल है कि इस दफा टाइम मैनेजमेंट है तो मैंने बहुत देखा, सोचा मुझे एक दफा एक चीज समझ आई, दूसरी दफा देखा तो ये सुस्ती की बात समझ आ गई, तीसरी दफा देखा तो हजरत उमर की पर्सनैलिटी समझ आ गई, चौथी दफा देखा तो आज के टाइम का जो बेस्ट यूज है वो नमाज को वक्त पे देखना होया। तो ये है तदब्बुर, गौर करें, इसके अंदर डूबा करें। लेकिन इसके लिए आपको पूरा फोकस्ड होने की जरूरत है, इसके लिए आलिम फाजिल होने की भी जरूरत नहीं है। सिर्फ आपका इंटरेस्ट हो, अल्लाह से दुआ कीजिए और कुरान सुन्नत के साथ रहिए। आपको एक कुरान के अंदर से क्या कुछ नहीं नजर आएगा। अल्लाह ताला हमें तदब्बुर वाला बना दे। अगर ये अल्लाह के सिवा किसी और की तरफ से होता तो इसमें बहुत इख्तलाफ बयान नहीं पाई जाती। अब आगे से अफवाह साजियां, ये भी एक टाइम वेस्टर है। मेरा बहुत दिल था कि आज इसको भी मेन पे लिखूं, लेकिन सारे लिखे नहीं जाते, लेकिन आज के टाइम वेस्टर्स में ये चीज बहुत अहम आ सकती है। और वो क्या, सुनी सुनाई बातों को आगे करना। पहले तो लोग मुंह से बोल के करते थे, आज तो अल्लाह की बना मैसेजेस को फॉरवर्ड कर करके सनसनी खेज फैला देते हैं। रुक जाइए, ठहर जाइए, सब तक फैला दीजिए, उम्मत मुस्लिमा के खिलाफ साजिश पकड़ी गई। आते हैं आपको ऐसे मैसेज, ऐसे लगता है जंग लग गई, ये हो गया, इसको आगे ना किया तो मुसलमान नहीं है, कल नबी को शक्ल नहीं दिखा सकेंगे, आपको सिफारिश नहीं मिलेगी। आउज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। इतने शौक से कभी दीन फैलाया होता ना मुसलमानों ने, जितने शौक से आज व्हाट्सएप और मीडिया से और सोशल मीडिया से जो मैसेजेस आगे कर रहे हैं, और वल्लाही 50% मैसेजेस लोग खुद कोई नहीं पढ़ते। इतना दीन का गुलगुला, आप दीन को इतना सस्ता करता रहे, एक मैसेज 10-10 जगह से आपको आता है, वही मुबारकें, वही सारी बातें। अल्लाह के बंदो, इससे फायदा उठाओ, अपनी जिंदगी को सही कामों में इस्तेमाल करो। तो आइए पढ़ते हैं और अपने लिए अमल की बात अभी से लिख लें। सुनी सुनाई बात को बगैर रेफरेंस के आगे नहीं करना। ये लोग जहां कोई इत्मीनान बख्श या खौफनाक खबर सुन पाते हैं इसे लेकर फैला देते हैं। हालांकि अगर ये इसे रसूल और अपनी जमात के जिम्मेदार असहाब तक पहुंचाएं तो वैसे लोगों के इल्म में आ जाएं जो इनके दरमियान इस बात की सलाहियत रखते हैं कि इसे सही नतीजा खस कर सकें। तुम लोगों पर अल्लाह की मेहरबानी और रहमत न होती तो तुम्हारी कमजोरियां ऐसी थी कि सिवाय चंद लोगों के तुम सब शैतान के पीछे लग जाते। याद रखिए, जितनी जमातें टूटती हैं वो अफवाहों की वजह से टूटती हैं। उम्मतों का इत्तेहाद, कौमों का इत्तेहाद, चाहे सियासी इत्तेहाद हो, मजहबी इत्तेहाद हो, अफवाह साजियां, उसने ये कह दिया, उसने तुम्हारे बारे में ये कह दिया, एक की बात दूसरे से, दूसरे की बात तीसरे से, उसके दिल में ये हो गया, वो तो बदल गया, वो तो सोच गया। इसी से याद रखिए कि उम्मत का इत्तेहाद टूटता है। फरमाए, पस है नबी, तुम अल्लाह की राह में लड़ो, तुम अपनी जात के सिवा किसी और के लिए जिम्मेदार नहीं हो, अलबत्त अहले ईमान को लड़ने पर उकसाओ। ये है आपका कारनामा। आप सिर्फ खुद काम नहीं करते थे, दूसरों को भी करवाते थे। आप खुद भी अपने मोटिवेटेड थे और दूसरों को भी मोटिवेशन देते थे। बईद नहीं कि अल्लाह काफिरों का जोर तोड़ दे। अल्लाह का जोर सबसे ज्यादा जबरदस्त और इसकी सजा सबसे ज्यादा सख्त है। जो भलाई की सिफारिश करेगा वो इसमें हिस्सा पाएगा। हम क्या सिफारिश कर सकते हैं भलाई की? आप देखिए कितने मौके होते हैं ना, हम सिर्फ 5 लोगों को डेली कॉल करें, सिफारिश क्या होती है, आप चले मैं आपको साथ ले जाऊंगी। नहीं आ सकते आप मिक्सलर से सुन लीजिए, यहाँ नहीं आ सकते आप मुजम्मिल हॉल में जाके सुन ले, वहां नहीं आ सकते आप मस्जिद में चले जाएं। कितना को वक्त लगता है, आपके सिर्फ एक जुमला बोलने से कोई सुनने लग जाए, आप कितने मुश्किल से सुन रहे हैं, बैठ रहे हैं, आ रहे हैं, वो दुनिया के किसी कोने में आपकी कोशिश से सुन रहा है, आपका सदका जारी है। पूरी दुनिया में हमारे मुसलमान बहन भाई फैले हुए हैं। आप पाकिस्तान में जाकर एक एक कॉल करके सबको मिक्सलर का लिंक दे दें, पाकिस्तान के टाइम के रिप्लेस दिखा दीजिए, क्या वक्त लगता है। अल्लाह के नबी ने फरमाया, मन दाल अल खैरी का फाइली ही, जिसने किसी को नेकी की दावत दी वो खुद उस काम को करने वाले के बराबर है। अल्लाह ताला में नेकियों के इन मौकों से फायदा उठाने वाला बनाए। अच्छा, ये भी सुस्ती में आता है, करूंगी फिर नहीं करते, चलो उसको पता ही होगा, चलो अब तो शुरू ही हो गया है। अच्छा, कई लोग कहेंगे ओ अब तो आपका कुरान शुरू हो गया, अब अगले साल आएंगे, यानी 5 पारों की बजाय 25 पारे छोड़ देंगे। किसने देखा अगला साल? आपको क्या पता अगले साल आप कितने मसरूफ होंगे, अल्लाह आपको और कितनी जिम्मेदारियां दे देगा। तो कभी नेकी के मौके को डिले ना करें, और जो बुराई की सिफारिश करेगा वो इसमें हिस्सा पाएगा। और अल्लाह हर चीज पर नजर रखने वाला है। कोई क्यूपान हो उसको तो फौरन आगे करते हैं, कोई सेल का साइन हो उसको फौरन आगे करते हैं, और ऐसी वैसी चीजें दुनिया में आगे आम की जाती हैं, हालांकि क्या पता आप उसकी वजह से गुनाहगार हो। कई देखिए ऐसी बेकार चीजें होती हैं जस्ट लोग आगे कर देते हैं, जोक है, झूठ है, म्यूजिक वाली चीजें हैं। अब जब लोग आगे से आगे उसको सुनेंगे, सबसे पहला गुनाह उस पर होगा जिसने उसको शुरू में शुरू किया था। आगे से अदब सिखाए जा रहे हैं, सलाम दुआ के तरीके, ये भी एक मुस्लिम कल्चर का हिस्सा था कि हम मुलाकात के वक्त में सलाम करें। वैजा हुजी तुम भी तही मिनहा और उद्दूहा, और जब कोई एहतराम के साथ तुम्हें सलाम करे तो इसको बेहतर तरीके से जवाब दो, कम अज कम इसी तरह अल्लाह का हर चीज का हिसाब लेने वाला है। अल्लाह वो है जिसके सिवा कोई खुदा नहीं, और वो तुम सबको क्यामत के दिन जमा करेगा। हाईलाइट करिएगा, ला यजमानकुम इला यौमिल कियामा ला रैब फीही, वो क्यामत का दिन जिसके आने में कोई शक नहीं। और अल्लाह की बात से बढ़कर सच्ची बात और किसकी हो सकती है? तसव्वुर में लाइए जरा, आएगी ना क्यामत, हम जिंदा होंगे या कब्रों में होंगे, क्यामत का धमाका बहुत सख्त होगा। आज उसके लिए तैयारी करनी। और आप देखिए ये लाइफ बहुत छोटा सा मौका है, इट्स अ वेरी शॉर्ट टर्म पीरियड। देखिए मैं हजरत नूह को सोचते हैं, सदियां और सदियां गुजर गई उनको कब्र पे के हुए। खुद नबी सल्लम को देख लीजिए, 1438 साल हो गए, 38 में से 10 निकाल दीजिए, तकरीबन 1428 साल हो गए हैं नबी सल्लम को दुनिया से गए हुए, कब्र में गए हुए। हम भी तो नहीं होंगे ना, चलिए उन लोगों को सोचिए जो पिछले साल थे आपके साथ, इस रमजान में नहीं है, क्या बड़ी बात है, मैं भी होंगी कि नहीं, शायद ये अगले रमजान के दिन भी मैं ले सकती हूँ कि नहीं, क्या पता मेरा इसी के दौरान ही इंतकाल हो जाए। तो हमेशा अपनी मौत को सोचें, ये चीज़ फिर आपके अंदर हिम्मत डालेगी, फिर आप अपने वक्त को ज़ाया नहीं करेंगे, सुस्ती सारी इंशाल्लाह ख़त्म होगी। अब इसके बाद तकरीबन 2-2.5 रुकू जो है ना, ये मुनाफिकत और इस्लाम की खारिजा पॉलिसी से मुतल्लिक है। मैं इसको इकट्ठा पढ़ूंगी और आप इसमें से खुद अपने लिए छोटे छोटे नुक्ते हाईलाइट करते जाएं, जहां जो बात आपको अपने लिए समझ आए उसको नोट कर लीजिए। फमा लकुम फिल मुनाफिकीन फियतैन, फिर तुम्हें क्या हो गया है कि मुनाफिकीन के बारे में तुम्हारे दरमियान दो राय पाई जाती हैं, हालांकि जो बुराइयां उन्होंने कमाई इनकी बदौलत अल्लाह इन्हें उल्टा फेर चुका। यदि बाज लोग मुनाफिकाना कामों को भी मुनाफिकत नहीं मानते और कुछ कहते हैं कि ये तो कुफर की बात है, क्या तुम चाहते हो कि जिसे अल्लाह ने हिदायत नहीं बख्शी इसे तुम हिदायत बख्शो, हालांकि जिसको अल्लाह ने रास्ते से भटका दिया इसके लिए तुम रास्ता नहीं पा सकते, वो तो ये चाहते हैं जिस तरह वो खुद काफिर हैं इस तरह तुम भी काफिर हो जाओ, ताकि तुम और वो सब यकसां हो जाए। इसको हाईलाइट कर लें, कहते हैं ना एक हमाम में सब एक जैसे, जो लोग खुद अल्लाह के नहीं बनते ना वो फिर दूसरों को भी नहीं बनने देना चाहते, वो कहते हैं नहीं हम सब फिर एक जैसे रहे। लिहाजा इनमें से किसी को अपना दोस्त ना बनाओ जब तक कि वो अल्लाह की राह में हिजरत करके ना आ जाए, और अगर वो हिजरत से बाज रहे तो जहां पाओ इन्हें पकड़ो और कत्ल करो, और इनमें से किसी को अपना दोस्त और मददगार ना बनाओ, अलबत्ता वो मुनाफिक इस हुक्म से मुस्तस्ना है जो किसी ऐसी कौम से जा मिले जिनके साथ तुम्हारा मुआहदा है, इस तरह वो मुनाफिक भी इससे मुस्तस्ना यानी एग्जेम्प्टेड हैं जो तुम्हारे पास आते हैं और लड़ाई से दिल बर्दाश्त है, ना तुमसे लड़ना चाहते हैं ना अपनी कौम से, अल्लाह चाहता तो इनको तुम पर मुसल्लत कर देता और वो भी तुमसे लड़ते, लिहाजा अगर वो तुमसे किनारा कश हो जाएं और लड़ने से बाज रहें और तुम्हारी तरफ सुलह आशती का हाथ बढ़ाएं तो अल्लाह ने तुम्हारे लिए इन पर दस्त दराजी की कोई सबील नहीं रखी। एक और किस्म के मुनाफिक तुम्हें ऐसे मिलेंगे जो चाहते हैं कि तुमसे भी अमन में रहें और अपनी कौम से भी, मगर जब कभी फितने का मौका पाएंगे इसमें कूद पड़ेंगे। ऐसे लोग अगर तुम्हारे मुकाबले से बाज ना रहें और सुलह और सलामती तुम्हारे आगे पेश ना करें और अपने हाथ ना रोके रखें, तो जहां वो मिले इन्हें पकड़ो और मारो, इन पर हाथ उठाने के लिए हमने तुम्हें खुली हुज्जत दे दी है। 4-5 किस्म के मुनाफिकाना रवैयों को हमने पढ़ा है। अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमें मुनाफिकत से बचाए। अब ये जो पारे का आखिरी हाफ है ना, इसमें निफाक की बहुत सारी बातें हैं, बल्कि जो आखिरी आयतें हैं उसमें तो बहुत ही खूबसूरत तरीके से अल्लाह ताला ने निफाक की बुराई को रोका है। इसके बाद कत्ल की बातें, किसी मोमिन का काम नहीं किसी दूसरे मोमिन को कत्ल कर दे इल्ला ये कि इससे चूक हो जाए, और जो शख्स किसी मोमिन को गलती से कत्ल कर दे तो इसका कफारा ये है कि एक मोमिन को गुलामी से आजाद करे और मकतूल के वारिसों को खून बहा यानी डेथ मनी या ब्लड मनी दे। इल्ला ये कि वो खून बहा माफ़ कर दें, लेकिन अगर वो मुसलमान मकतूल किसी ऐसी कौम से था जिससे तुम्हारी दुश्मनी हो, तो इसका कफ़ारा एक मोमिन गुलाम आज़ाद करना है, और अगर वो किसी ऐसी गैर मुस्लिम कौम का फ़र्द था जिससे तुम्हारा माहदा हो, तो इसके वारिसों को खून बहा दिया जाएगा और एक मोमिन गुलाम को आज़ाद करना होगा। फिर जो गुलाम ना पाए वो पे दर पे 2 महीने के मुसलसल रोज़े रखे। देखिए कत्ल इतना बड़ा गुना है इस्लाम की नज़र में कि कत्ल के पीछे कितनी आयतें हैं, पीछे भी आपने पढ़ी है, आगे भी सूरत मायदा में भी आएंगी। यानी इस्लाम नहीं चाहता कि किसी की जान ली जाए या अपनी जान ली जाए। ये इस गुनाह पर अल्लाह से तौबा का तरीका है, और अल्लाह ताला अलीम और दाना है। रहा वो शख्स जो किसी मोमिन को जान बूझ कर कतल करे, इसकी जजा जहन्नुम है जिसमें वो हमेशा रहेगा। इस पर अल्लाह का गजब और उसकी लानत है, और अल्लाह ने इसके लिए सख्त अजाब मुहैया कर रखा है। यानी एक्सीडेंटली भी अगर कोई किसी से मारा जाता है तो उसकी इतनी कड़ी सजा है, और जान बूझ के कोई मार दे तो उसके ऊपर तो सिर्फ अल्लाह से माफी मांगने की जरूरत है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा दरबतुम फ़ी सबीलिल्लाहि फ़तबय्यनू। या फिर एक खूबसूरत अदब सिखाया जा रहा है कि तहकीक कर लिया करो, बगैर तहकीक के लोगों को काफिर मोमिन और मुशरिक और मुनाफिक ना कहो, बल्कि उनके जाहिर पे क्यास करो। एक वाक्या था जिसकी तरफ इधर इशारा है। ए लोगों जो ईमान लाए हो, जब तुम अल्लाह की राह में जिहाद के लिए निकलो तो दोस्त दुश्मन में तमीज़ करो, और जो तुम्हारी तरफ इस्लाम से पहल करे इसे फौरन ना कह दो कि तू मोमिन नहीं। अगर तुम दुनियावी फायदा चाहते हो तो अल्लाह के पास तुम्हारे लिए बहुत से अम्वाले गनीमत हैं, आखिर इसी हालत में तुम खुद भी इससे पहले मुब्तला रह चुके हो। फिर अल्लाह ने तुम पर एहसान किया, बस तहकीक से काम लो, और जो कुछ तुम करते हो अल्लाह इससे बाखबर है। आप देखिए कि किसी दूसरे को काफिर या मुनाफिक कहना बहुत बड़ी बात होती है। इसमें मेरे आपके लिए भी ये अमल है, कुछ लोग हैं जो दीन में भी हो सकते हैं हमसे पीछे हों, आप उनके हाल हुलिए उनकी बातों को देखकर कुछ समझें, लेकिन आप उनके बारे में कभी बदगुमानी ना करें, अपना वो वक्त कभी ना भूलें जो हिदायत से पहले था। कुरान की तरफ आने से पहले की जिंदगी को जरा सोचिए, हाथ पांव ठंडे होते हैं, एकदम शर्मिंदगी आती है। तो अभी बाकी लोग जिन्होंने कुरान नहीं पढ़ा, आप कैसे उनसे बहुत बड़ी बड़ी अच्छी उम्मीदें लगाएं? बस एक दावत दे लोगों को, कुरान से जुड़े, अल्लाह के नबी की बात तक पहुंचे, ना उनकी बुराइयों पे, ना पहनने पे, ना ओढ़ने पे, ना बोलने पे तनकीद करें। आप देखिएगा अल्लाह की किताब उनको सब कुछ खुद भी सिखा देगी इंशाअल्लाह ताला। अब आगे जब बात होती है अल्लाह के रास्तों की, निफाक की, तो फिर फर्क अल्लाह बयान करते हैं, कौन मजबूरियों में रुकते हैं और कौन किसी मुश्किल में है। ये सब पीछे से नबी की जिंदगी के साथ जुड़ी हुई चीजें हैं। फरमाया, ला यस्तविल कायदून मिनल मोमिनीन गैर उलिद दरर। मुसलमानों में से जो लोग किसी माजूरी के बगैर घर बैठे रहते हैं और वो जो अल्लाह की राह में जानो माल से जिहाद करते हैं, दोनों की हैसियत यकसा नहीं। आपकी तारीफें हो रही हैं, क्या आप घर से निकल कर आए हैं अल्लाह के दीन के लिए आए हैं? अल्लाह के यहाँ पता नहीं आपकी कितनी शान है, हम तो आपकी वो है इज्जत कर ही नहीं सकते जिसके आप मुस्तहिक हैं। अल्लाह ने बैठने वालों की बनिस्बत जानो माल से जिहाद करने वालों का दर्जा बड़ा रखा है। अल्लाह हमें इस रास्ते में भागने वाला बना दे। अगरचे हर एक के लिए अल्लाह ने भलाई का वादा फरमाया है, मगर उनके हाँ मुजाहिदों की खिदमात का मुआवजा बैठने वालों से बहुत ज्यादा है। इनके लिए अल्लाह की तरफ से बड़े दर्जे हैं और मगफरत और रहमत है, और अल्लाह बड़ा मुआफ करने वाला और रहम करने वाला है। क्या पता आपका मेरा ये यहाँ भाग भाग के आना हमारी जिंदगी के किसी बहुत बड़े गुनाह को माफ करवा दे, हमारी किसी बीमारी की सेहत का जरिया बन जाए, हम पे आने वाली किसी मुश्किल परेशानी से अल्लाह निजात दे दे, तो हमेशा शुक्र किया करें कि अल्लाह तू जो काम ले रहा है इसको अब मरते दम तक हमसे लेता ही रख। इन्नल्लज़ीना तवफ्फाहुमुल मलाइका। अब लोग जो अल्लाह के रस्तों में नहीं निकलते, कहा एक वक्त तो आएगा निकलना पड़ेगा, कब? जब तुम्हारी रूह चली जाएगी। फरमाया, वो लोग जो अपने नफ्स पर जुल्म कर रहे थे उनकी रूहें जब फरिश्तों ने कब्ज की तो इनसे पूछा, ये तुम किस हाल में मुब्तला थे? उन्होंने जवाब दिया, हम जमीन में कमजोर और मजबूर थे। फरिश्तों ने कहा, अच्छा, क्या खुदा की जमीन वसी ना थी कि तुम इसमें हिजरत करते? ये वो लोग हैं जिनका ठिकाना जहन्नुम, वो बहुत बुरा ठिकाना है। हाँ, जो मर्द औरतें और बच्चे वाकई बेबस हैं और निकलने का कोई रास्ता और जरिया नहीं पाते, बईद नहीं कि अल्लाह इनको मुआफ कर दे, अल्लाह बड़ा मुआफ करने वाला और दरगुजर फरमाने वाला है। जो कोई अल्लाह की राह में हिजरत करेगा वो जमीन में पनाह लेने के लिए बहुत जगह और बसर औकात के लिए बड़ी गुंजाइश पाएगा, और जो अपने घर से अल्लाह और रसूल की तरफ हिजरत करने के लिए निकले फिर रास्ते ही में इसे मौत आ जाए, इसका दर अल्लाह के जिम्मे वाजिब हो गया। अल्लाह बहुत बख्शिश फरमाने वाला और रहीम है। क्या पता चला मजबूर बन के ना रहो, अगर तुम किसी जगह अपने दीन पर अमल नहीं कर सकते, तुम्हें मजबूर किया जाता है किसी ऐसे काम पे कि जो तुम्हारे दीन से टकराता है, तो फिर तुम्हें कोई रोकता नहीं है, कोई तुम्हें जबरदस्ती कहीं नहीं रोकता। या तो तुम कोई तब्दीली पैदा करो, या अल्लाह के दीन को नुमाया करो, या फिर उस जगह को छोड़ दो। अब जब सफर की बात आई तो साथ यहाँ नमाज की बात है, और साथ ही फरमाते हैं वाइजा दरब तुम फिलर दिफा लई साले कुम जो ना हुन। और जब तुम लोग सफर के लिए निकलो तो कोई मुजायका नहीं, अगर नमाज में कमी कर दो, ये नमाज कसर है। इंशाल्लाह आपको इसके मसाइल का भी चैप्टर भेजेंगे, खसूसन जब तुम्हें अंदेशा हो कि काफिर तुम्हें सताएंगे, क्योंकि वो खुल्लम खुल्ला तुम्हारी दुश्मनी पर तुले हुए हैं। और ए नबी, जब तुम मुसलमानों के दरमियान हो और हालत जंग में इन्हें नमाज पढ़ाने के लिए खड़े हो, यहाँ जरा सा मैं आपका शोर बेदार करके बात करूं। मैदान जंग, सामने दुश्मन, आप पीछे, नमाज का वक्त आ गया, क्या करो? बाद में पढ़ लेंगे। लो अल्लाह के रास्ते में निकले, अब नमाजें पढ़े? नहीं, अभी पढ़नी है। चलो क्या करो, सब अलग अलग पढ़ लो। नहीं, पढ़नी भी जमात से। कैसे पढ़ो? उसका तरीका है सलातुल खौफ। यहाँ मैं चंद जुमले बोल दूँ अपने उन भाइयों के लिए और हमारी उम्मत के वो ब्रदर्स जो बिला वजह मस्जिदों की जमात को जाया करते हैं, ये आयत उनके सामने हुज्जत है। मैदाने जंग, अल्लाह का नबी, सहाबाए कराम, अल्लाह के दीन के दिफा में है, गोली चल सकती है, सीने पे चलती है, इससे बड़ा खतरा और क्या होगा? कहा नहीं, फिर भी नमाज तुमने जमात से पढ़नी है। तरीका बदल लो, उसको जरा हल्का कर लो, मूवमेंट कर लो, लेकिन नमाज नहीं छोड़ोगे। तो फिर आप बताइए कहाँ हुज्जत है बगैर जमात के पढ़ने की? और जो पढ़ते ही नहीं वो जमात की नमाज को तो वैसे एक्सट्रीमिज्म कहेंगे। आइए दुआ करते हैं अपने मर्दों के लिए, अल्लाह हमारे मर्दों को 5 वक्त मस्जिदों का नमाजी बना दे। और ए नबी, जब तो मुसलमानों के दरमियान हो और हालत जंग में इन्हें नमाज पढ़ाने के लिए खड़े हो, तो चाहिए कि इनमें से एक गिरोह तुम्हारे साथ खड़ा हो और अपने असलहे लिए रहें, फिर जब वो सजदा करें तो पीछे चला जाए। दूसरा गिरोह वो जिसने भी नमाज नहीं पढ़ी आकर तुम्हारे साथ पढ़े, वो भी चौकन्ना यानी होशियार रहे और अपने असलहे लिए रहे, क्योंकि कुफार इस ताक में है कि तुम अपने हथियारों और अपने सामान की तरफ से जरा गाफिल तो हो तो वो तुम पर यकबारगी टूट पड़े। अलबत्ता अगर तुम बारिश की वजह से तकलीफ महसूस करो या बीमार हो तो असलहा रख देने में कोई हरज नहीं, मगर फिर भी होशियार रहो। यकीन रखो अल्लाह ने काफिरों के लिए रुस्वा को नजाब मुहैया कर रखा है। फिर जब नमाज से फारिग हो जाओ तो खड़े और बैठे और लेटे हर हाल में अल्लाह को याद रखो। कैसी शख्सियत थी, कोई नेकी करके फख्र नहीं, तमन्ना नहीं, कहा अब जिहाद किया है, अब नमाज पढ़ी है, तो अब क्या करो? अब बैठ के और नेकियां करो, जिक्र करते रहो, जो नेकी जिस वक्त जिस जुबान के हिस्से से कर सकते हो उसको करो। और जब इत्मीनान नसीब हो जाए तो पूरी नमाज पढ़ो। नमाज दर हकीकत ऐसा फर्ज है जो पाबंदी है वक्त के साथ अहले ईमान पर लाजिम किया गया। ये है हमारे इस बारे का टाइम यूजर के नमाज को वक्त पे पढ़ना है। आइए आज नियत करते हैं, वैसे ही रमजान है लेकिन बाद में भी इस पे आदि करना है, जो ही अजान हो नमाज पढ़नी है। करते हैं इसकी नियत, बंद कर दें चूल्हे, हो जाए खराब चावल, गल जाए चावल, उबल जाए दूध, कोई नमाज अचानक नहीं आती है, हमें पहले से पता होता है। हर नमाज से 15 मिनट पहले तैयारी करके वुजू करके बैठिए और आप देखेंगे उससे बरकत कितनी होगी आपकी जिंदगी में, आप इसका अंदाजा नहीं लगा सकते। तो इंशाल्लाह जब आप इसमें रहेंगे आप देखेंगे कि अल्लाह ने, अगर हमारी जिंदगी में नमाज का वक्त आ गया है तो उस वक्त कुछ और हम नहीं कर रहे, तो ये आगे जाके ट्रेनिंग ऐसी बनेगी कि जब नेकी का मौका आएगा तो हम उसको छोड़ेंगे नहीं। और नमाज के पाबंदी वक्त के साथ हम अपने लोगों में देखिए, कोई किसी को सुबह पानी मांगे तो शाम को दे, ले लेगा? घंटे बाद लाकर पानी दे। तो नमाज में भी तो अल्लाह ताला फजर से लेकर इशा तक 5 बार आपको मुझे बुलाता है, हय्या अलस सला, हय्या अलल फला। लेकिन आज आप देखिए कि उम्मत का हाल क्या है, कामयाबियों के पीछे भागते हैं। ये आपके सामने एक इमेज है, इसको देखिएगा, 5 का आदत बना हुआ है और ये 5 नमाजें हैं, फजर, जोहर, असर, मगरिब, इशा। ये चीजें आपकी मेरी तवज्जो चाहती हैं, टाइम्स ऑफ सक्सेस। 5 नमाजों में अल्लाह ताला कहता है हय्या अलस सला, हय्या अलल फलाह, और हम अपने काम निपटाते रहते हैं। तो चाहे वो फलाह या कामयाबी खाना पकाने की है या बाहर की चीज़ों की है, हमने इंशाल्लाह इसको नहीं छोड़ना। अल्लाह ताला हमें वक्त पे नमाजें अदा करने की तौफीक अता फरमाए। इस गिरोह के ताकुब में कमजोरी ना दिखाओ, अगर तुम तकलीफ उठा रहे हो तो तुम्हारी तरह वो भी तकलीफ उठा रहे हैं, और तुम अल्लाह से उस चीज के उम्मीदवार हो जिसके वो उम्मीदवार नहीं। अल्लाह सब कुछ जानता है और वो हकीम और दाना है। अल्लाह ताला आपको मुझे तौफीक दे कि हम बेहतरीन तरीके से इन चीज़ों को ले सकें। आप देखिए कि ये चीज़ें जो है ना, ये आपके मेरे लिए एक मैसेज है, पैगाम है। और वो क्या है कि दीन की असल समझो। हमने आज दीन की असल समझने से ज़्यादा उसके रिचुअल्स और उसकी ज़ाहरी चीज़ों को लिया है। अल्लाह ताला आपके मेरे लिए इसको आसान फरमा दे। इंशाअल्लाह ताला कल हम यहीं से आगे शुरू करेंगे और अल्लाह ताला से दुआ करेंगे कि वो हमारे वक्त में बरकत दे दे। सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहमदिका अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंत अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समील अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। व सल्लल्लाहु ताला खैरि खल्क़िही व सहाबी अजमाईन बि रहमतिका या अरहमुर राहिमीन। आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।